नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, चिकित्सा, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और सुशासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में आज श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने बताया कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिला नेतृत्व आधारित विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक उपस्थित थे। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त को समाप्त होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने 21 जून को नीट यूजी पुनः परीक्षा की अवधि 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दी है। ये परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। एजेंसी ने कहा है कि एनटीए नीट यूजी परीक्षा निष्पक्ष, सुरक्षित और उम्मीदवारों की आवश्यकताओं के अनुरूप आयोजित कराने के लिए प्रतिबद्ध है। सर्वोच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन की याचिका खारिज कर दी है। उन्होंने मध्य प्रदेश से अपनी राज्यसभा उम्मीदवारी रद्द होने के खिलाफ याचिका दायर की थी। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि वह नामांकन रद्द किए जाने के चुनाव अधिकारी के फैसले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। चुनाव अधिकारी ने तेलंगाना में एक आपराधिक मामले की कथित जानकारी छिपाने पर मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त किया था। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से संस्थागत, औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों के ईंधन खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि इन्हें अपनी जरूरत का पेट्रोल और डीजल थोक बिक्री केंद्रों से ही लेना होगा। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधाओं के बीच स्थानीय स्तर पर ईंधन की कमी को रोकने के लिए लिया गया है। ये प्रतिबंध 90 दिनों तक लागू रहेंगे। विदेश मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाजों पर हमलों का विरोध दर्ज कराने के लिए आज भारत में अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मिक्स को तलब किया। कल एक और जहाज पर हमला किया गया जिस पर चालक दल के 22 सदस्य भारतीय थे। मंत्रालय ने दूसरी बार किसी अमरीकी राजनयिक को तलब किया। इसी तरह के हमले में जहाज पर तैनात 3 भारतीय मारे गए। पहले इन्हें लापता माना जा रहा था। भारत और बांग्लादेश ने सीमा पर शांति, अमन, चैन और स्थिरता बनाए रखने के संकल्प को दोहराया है। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के बीच महानिदेशक स्तर की 57वीं सीमा समन्वय बैठक 8 से 11 जून तक नई दिल्ली में बीएसएफ मुख्यालय में आयोजित की गई। इसने सीमा पर मौजूदा स्थिति की समीक्षा करने और सीमा सुरक्षा तथा सीमा प्रबंधन से जुड़े आपसी चिंता के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए महत्वपूर्ण मंच प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 जून से फ्रांस और स्लोवाकिया के दौरे पर रहेंगे। फ्रांस के नीस शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में फ्रांस में भारत के राजदूत संजीव सिंगला ने बताया कि इसका उद्देश्य भारत की डीप टेक प्रतिभाओं को वैश्विक स्तर पर प्रदर्शित करना है।
काफी अरसे से जो द्विपक्षीय संबंधों में एक फोकस रहा है हमारा, किस तरह से हम इनोवेशन की तरफ ज्यादा फोकस बढ़ाएं, और दोनों देश एक तरह से नॉलेज इकोनॉमीज हैं, दोनों देश सोच रहे हैं कि किस तरह हमारे संबंध हैं इनको और प्रगाढ़ करें हम, और इसी की वजह से हम भारत इनोवेट्स यहाँ उसका आयोजन कर रहे हैं, जो कि पहली बार है कि हमने इतने बड़े पैमाने पे भारत से डीप टेक स्टार्टअप्स बाहर लाके हम एक मंच पे हम रख रहे हैं।
भारतीय निशानेबाज और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा का कल रात निधन हो गया। वे 49 वर्ष के थे। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और खेल मंत्री ने जसपाल राणा के निधन पर शोक व्यक्त किया है। भारत की पीवी सिंधु ने ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।